वो कहता था खुदा मान पहले मुझे फिर खाना दूंगा। देखा तो वो रेत आटे में बदल चुकी थी। मैं भी लोगों को जिंदगी देता और मारता। उसने फांसी दे दी उसको जो रिहाई का परवाना हासिल कर चुका था। वो कहता था मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन हयात खलील व ज़बी के आज के एपिसोड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक तारीखी मुनाज़रे की। उस मुनाज़रे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इसको जिक्र फरमाया है। ये वो मुनाज़रा है जो अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ज़ालिम बादशाह नमरूद के दरमियान हुआ। यह मुनाज़रा कब हुआ इस बारे में मुफस्सिरीन उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ के नज़दीक जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा तो नमरूद ने उन्हें जेल में डाल दिया और फिर आग में डालने से पहले जेल से निकालकर आपको अपने सामने बुलाया। उस वक्त यह मुनाजरा हुआ और उनके अलावा मुफस्सिरीन का कौल यह है कि यह मुनाजरा आप अलैहि सलाम के आग से निकलने के बाद हुआ। बहरहाल नाज़रीन इस मुनाजरे की डिटेल कुरान मजीद में जिक्र है। इसका बैकग्राउंड यह है कि नमरूद ने अपनी सल्तनत में खुराक की तमाम चीजों को अपने कब्जे में ले लिया था और उसका कानून यह था कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई यानी माद अल्लाह उसके खुदा होने को तस्लीम करते थे। चुनाचे एक मरतबा जब अल्लाह पाक के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ लाए तो नमरूद ने कहा पहले तुम मुझे अपना खुदा तस्लीम करो फिर ही मैं तुमको गल्ला दूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनकर भरे दरबार में अलल ऐलान फरमाया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा की इबादत करने वाला हूं जो वहदहू ला शरीक है। यह सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आप अलैहिस्सलाम को दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। इस वाकये के बाद आप अलैहिस्सलाम और आपके चंद फॉलोवर्स जो मोमिन थे वो की शिद्दत से इंतहाई कमजोर हो गए। इस मौके पर आप अलैहिस्सलाम एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और फिर उस थैले में रेत भरकर लाए और अल्लाह पाक से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई। फिर आपने उस आटे से अपने साथ जो मौजूद मोमिनीन थे उनको खिलाया और खुद भी उससे तनावुल फरमाया। इसके बाद नाज़रीन फिर नमरूद की दुश्मनी आप अलैहिस्सलाम के साथ इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने आप अलैहिस्सलाम को आग में डलवा दिया मगर वो आग अल्लाह की रहमत से आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ उस आग से बाहर निकल आए जिसका वाकया हमने पिछले एपिसोड में तफसील से सुन लिया। आग वाले वाकये के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वहदहू ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे, लोगों को राह हक की तरफ बुलाने लगे। नमरूद आप अलैहिस्सलाम की तबलीग से तंग आ गया और फिर एक दिन उसने आपको अपने दरबार में बुलाया और मुनाजरे की सूरत में आपसे बातचीत शुरू कर दी। नमरूद ने कहा ऐ इब्राहिम बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तरफ तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, नमरूद मेरा रब वो है जो लोगों को जिलाता यानी जिंदगी देता है और मारता है। इस बात के जवाब में नमरूद ने कहा कि अना युहयी व उमीत, ये तो मैं भी कर सकता हूं। ये कहने के बाद उसने दो कैदियों को जेल से बुलाया। उनमें दो जो कैदी थे उनकी सूरत हाल ये थी कि एक को मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी और एक वो था जिसको बरी कर दिया गया था, रिहाई का परवाना मिल चुका था। नमरूद ने फांसी जिसको दी जा चुकी थी उसको छोड़ दिया और जो रिहा होने वाला था उसको फांसी पर चढ़वा दिया। तो कहने के बाद नमरूद ने कहा कि देखो जो मरने वाला था या मुर्दा था मैंने उसको जिंदा कर दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मार दिया। यानी अपने तौर पर उसने ये समझा कि मैं जिंदगी देने वाला और मौत देने वाला हूं। और एक कॉल के मुताबिक उसने चार आदमी लिए और उनको भूखा प्यासा रखा, कुछ खाने पीने को ना दिया। फिर जब वो भूख प्यास से मरने लगे तो दो को खाना पानी दे दिया जिससे वो बच गए और दूसरों दो को ना दिया वो दोनों मर गए। तो वही कहने लगा कि देखो मैंने मौत भी मैं देता हूं जिंदगी भी मैं देता हूं। नमरूद के इस बेवकूफाना इस्तेदलाल से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर यह बात तो मुकम्मल तौर पर वाजे हो गई कि नमरूद तो बिल्कुल ही अहमक है जो जिलाने और मारने यानी जिंदा करने और मारने का मतलब भी नहीं समझ रहा। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने उसके सामने दूसरी बहुत ही वाजे और रोशन दलील पेश फरमाई। आपने उससे इरशाद फरमाया फइन्नल्लाहा यअती बिश्शम्सी मिनल मशरिकी फअती बिहा मिनल मगरिब, ऐ नमरूद मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल दे। ये दलील सुनकर नमरूद की क्या हालत हुई। कुरान फरमाता है फबुहितल्लज़ी कफर, तो उस काफिर के होश उड़ गए, वो हैरान और परेशान हो गया कि इस दलील का काउंटर कैसे करे। वो कुछ भी ना बोल सका और इस तरह यह मुनाजरा खत्म हो गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फतायाब होकर इस मुनाजरे से दरबार से बाहर तशरीफ ले आए और पहले की तरह तौहीद इलाही का दर्स अलल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मुनाजरे को इस अंदाज में बयान फरमाया اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے،
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
ترجمہ، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں. ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب یعنی مشرق سے، تو اس کو پچھم یعنی مغرب سے لیا، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو. ناظرین، اس قرآنی واقعے اور تاریخی مناظرے سے ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بڑی فوج سے خوفزدہ ہوئے اور نہ اس کے ظلم و جبر سے روب میں آئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ علیہ السلام کو آگ کے شولوں میں ڈلوا دیا، اس وقت بھی آپ کی استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہ ہوئی، اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے، اور پھر اس بے رحم نے آپ علیہ السلام پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا. پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و دبدبہ دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ بالکل بے خوف ہو کر آپ نے اس کے مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا، اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور واضح دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور پھر بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. ناظرین، بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا، اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا. یہ ایمان اور عقیدہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک حق پر چلنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرماتا ہے. دیکھیں، ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینا بند کر دیا اور ملک بھر میں ان کو کہیں ایک دانہ بھی نہیں ملا، تو اللہ پاک نے ریت اور مٹی کو ان کے لیے آٹا بنا دیا. بہرحال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر و عمل اور آپ کا یہ اسوہ اور آپ کی یہ سیرت تمام سچے اور حق پر قائم رہنے والے عالموں کے لیے چراغ راہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. یہ وہ روشن حقیقت ہے جو چمکتے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، بس ضرورت ہے آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی. شاعر نے یہی بات بڑے خوبصورت انداز میں کہی کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سئیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. بہرحال، اسی شعر پر آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.